ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में सभी मनुष्य भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं, है ना। भक्ति में लोग सोचते हैं हम अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान हमारे सन्मुख प्रकट हो जाएंगे और तथास्तु कह के हमारी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। भगवान एक की मनोकामना थोड़ी पूर्ण करेंगे, वो तो फिर दुनिया की जो रिश्वतखोर हो गए ऐसे हो गए। फिर भगवान को सिर्फ भाग्य विधाता नहीं, विधि विधाता भी कहा जाता है। भगवान हमें विधि बताते हैं किससे हमारा भाग्य बनता है, वो ज्ञान और समझ हमें देते हैं। तो भगवान भाग्य बनाने की विधि बता देते हैं और जो करेगा सो पाएगा। भाग्य बनाने की विधि क्या है? भाग्य बनाने की विधि एक ही है, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग से ही भाग्य बनेगा, तपस्या से ही भाग्य बनेगा और जितना सेवा करेंगे भाग्य बनेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो त्याग सबसे मुख्य है। त्याग, हम त्याग की चर्चा कर रहे थे क्योंकि अंतिम उड़ान के लिए, रूहानी यात्रा के लिए सबसे पहले तो दुनिया से वैराग्य वृत्ति चाहिए। जब तक ये संसार से वैराग्य नहीं आएगा तब तक हम जा ही नहीं सकेंगे, दुनिया को छोड़ नहीं सकते हैं। वैराग्य के साथ साथ फिर त्याग, त्याग में भी पुरानी देह पुरानी दुनिया दोनों को त्यागना पड़ेगा। परंतु सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो यही है कि ये देह, जब इतने जन्मों से देह के साथ ये संसार में रहते हुए अभिनय करते करते ये देहभान ऐसा पक्का हो गया है, देह अभिमान ऐसा पक्का हो गया है, इसको छोड़ना, इसके लिए तपस्या चाहिए। ऐसे सहज नहीं छूटेगा। ईश्वरीय ज्ञान का सबसे पहला पाठ है मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और वही अंतिम पाठ है। ये पाठ को जो पक्का नहीं पढ़ा है वो अंत में फेल हो जाएगा। इसकी ही तपस्या की आवश्यकता है अभी। तो देह, ये पुराना शरीर, पांच तत्वों का पुतला, ये दुम, इसको ही यहाँ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दम निकल जाएगा। अंत में ये देह साथ में 50-60 किलो का शरीर को लेके नहीं जाएंगे, देह को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत दिन का अभ्यास चाहिए। और कैसे छूटेगा मेरे भाई और बहनों? भक्ति में फिर भी डर रहता था, लोग भगवान को डरते हैं, पाप कर्म से बचते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद एकदम अलविदा हो जाते हैं। आज भी दुनिया की परिस्थिति को हम सभी देख रहे हैं अच्छी तरह से, फिर भी बहुत बाबा के बच्चे अलविदा हैं। जो तपस्या करनी चाहिए, जो अटेंशन होना चाहिए, कहाँ है? सभी के अंदर वैराग्य वृत्ति और तपस्या की लहर एक ही साथ संगठित रूप में अभी चाहिए। क्यों? बाबा ने बहुत बार चेतावनी दी है, बच्चे अंत में ये धर्मराजपुरी की सजा बहुत दर्दनाक असहनीय होगा। अभी कुछ भी जीवन में होता है तो अभी तो ब्राह्मण परिवार का सहयोग है, साथ है, बाबा का सहारा है, लेकिन अंत में जब महाविनाश शुरू होगा, बाबा चल पड़ेंगे, बाबा के साथ साथ जो अरण्य देहभान को छोड़े होंगे साथ साथ चले जाएंगे, बाकी जो देहभान को नहीं छोड़ पाया यहाँ रहेगा वो चिल्लाएगा, त्राहिमाम त्राहिमाम करेगा। धर्मराजपुरी की सजा बहुत कठोर है मेरे भाई और बहनों। शरीर छोड़ते समय बहुत भाई बहन पूछते हैं कि धर्मराजपुरी कहाँ है, क्या ऊपर होगा, क्या कहीं हम जाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? सचमुच जब शरीर छोड़ेंगे वो अंतिम समय की स्थिति, बहुत लोगों से मैं अनुभव में सुना भी हूँ, क्योंकि हम हॉस्पिटल में बहुत लोगों का अनुभव सुनते हैं, मौत तो मैं बहुतों सैकड़ों देखा हूँ। तो अंत समय में जब शरीर हम छोड़ते हैं, कई तो एकदम बहुत खुशी खुशी से बाबा 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 उड़ गए, भोली भोली माताएं बाबा 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 उड़ गए, देखा हूँ, कोई एक इंजेक्शन तक भी लगाना नहीं पड़ा। लेकिन कुछ तो सालों तक भी हॉस्पिटल में पैरालिसिस होके पड़े हैं, हिला नहीं पाते हैं हाथ पांव। चेहरे से पता चलता है अंदर आत्मा को कितने तड़पन है, कितने दुख है। तो अंतकाल बहुत दर्दनाक, बहुत भयानक होगा। और एक भाई अपना अनुभव सुनाए, वो मरते मरते एकदम बच गए। वो सुना रहे थे, मैं अंत में जब सोचा कि अभी जा रहा हूँ, मुझे पूरा एकदम मेरी बचपन से लेके अभी तक मेरी पूरा सारा जन्मपत्री जैसे एकदम एक रील की तरह मेरे सामने पूरा एकदम दिखाई दिया। तो बाबा कहते, अंत में तुम जो भी पाप कर्म किए हो तुम्हारे सामने आएगा और वो पाप भूत की तरह तुमको सताएगा। तो जो बहुत समय से तपस्या द्वारा, देहभान का त्याग द्वारा अपने को अशरीर बनाया होगा, वो बाबा के साथ उड़ जाएगा। मेरे भाई और बहनों, अभी तो तीसरा नेत्र खोलना चाहिए, मैं कहूँगा अभी तीसरा नेत्र खोल करके अच्छी तरह से रियलाइज करने की आवश्यकता है। अभी अलबेलापन का समय नहीं है। जो अलबेले होंगे वो तो अज्ञानी लोग, तो जिनको पता ही नहीं है भगवान संसार में आए हैं, वो तो चिल्लाएंगे ही, वो तो रोएंगे ही। लेकिन ब्राह्मण बनकर अलबेले होकर रहेंगे, पुरुषार्थ नहीं किया, तपस्या नहीं किया, त्याग नहीं किया, अंत में बाबा कहते खून के आंसू बहाना पड़ेगा। इसलिए तो अब तो जागे हैं सभी। तो बाबा कहते सबसे पहला त्याग तुम्हारा देह का त्याग, देहभान का त्याग, देह अभिमान का त्याग। देह अभिमान की निशानी क्या है? देह अभिमान अगर हमारे अंदर है अभी तक, क्या हम संपूर्ण देही अभिमानी बने हैं? देह अभिमान को त्यागना है और देही अभिमानी बनना है। बाबा रोज रोज यही पाठ पक्का कराते हैं। क्या हम संपूर्ण देही अभिमानी बने हैं? खुद को चेक करें। बाबा के अव्यक्त मुरलियाँ अगर पढ़ेंगे, बाबा मुरली पूरा विस्तार रूप में समझा के लास्ट में कहते हैं समझा। क्यों कहते ऐसे कि सचमुच हमने समझा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं, अगर समझा तो बदल जाते। लेकिन अभी समय है, अभी समय भी चेतावनी दे रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, तो देह अभिमान अगर अभी तक हमारे अंदर है, देह अभिमान की क्या निशानी है? बुद्धि का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, पुराने स्वभाव संस्कार का इमर्ज होना, क्या है? ये देह अभिमान है। जिसको देह अभिमान होगा वो तुरंत एकदम अहंकार दिखाई देगा, उसके बोल से, व्यवहार से, चाल चलन से, और अपमान की फीलिंग झट उनको होगी। कोई बात कुछ हो गया तुरंत अपमान। तो अभिमान और अपमान ये दोनों बॉडी कॉन्शसनेस की निशानी है। हम खुद चेक करें क्या निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ जो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है, स्थित प्रज्ञ हर परिस्थिति में एक स्थिति, क्या ऐसी बनी है? क्योंकि जो देही अभिमानी होगा, आत्म अभिमानी होगा, उसकी ऐसी अवस्था बनेगी, अपने अंदर की सारी बुराई खत्म हो जाएगी, एक स्थिति बन जाएगी। तो यही तपस्या है देहभान को त्यागना। तो आत्म अभिमानी बनना यही तपस्या है, देह अभिमान को छोड़ना यही त्याग है। यही त्याग और तपस्या से सेवा भी कर पाएंगे और भाग्य भी बनेगा। मेरे भाई और बहनों, बाबा क्यों इशारा देते हैं? क्योंकि जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं, देहभान को नहीं छोड़ते हैं, आत्माभिमानी नहीं बनते हैं, विकारों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सभी विकारों का जड़ तो यही देह अभिमान है। जब तक हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति एकदम पक्का नहीं किए हैं, कैसे ये विकार छूटेगा? तो संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए, सभी पापों से मुक्त होने के लिए ये अभ्यास बहुत काल का चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने खुद अभ्यास किया। बाबा ने लिख लिख कर डायरी भर दिए, दीवारों में, फ्लोर में लिख लिख कर बहुत मेहनत की। एक बार दादी जानकी जी सुना रही थी कि हम नीचे बैठे रहते हैं, बाबा संदली पर बैठ के हमको दृष्टि देते थे। तो दृष्टि देखते थे तो ऐसे देखते थे, हम बैठे हैं सामने तो ऐसे देखने के बजाय ऐसे देखते थे, जैसे कि पूरा अंदर के हमारी आत्मा को एकदम झांक के देख रहे हैं। ये हमारे महारथियों ने, हमारी दादियाँ ने, सभी ने ये अभ्यास किया था। अभी ये अभ्यास प्राय छूट गया है, मैं खुद देख रहा हूँ पिछले 35 साल से। तो शुरू शुरू में किसी भी दादियों को मिलो तो दादी पहले दादियाँ पहले दृष्टि देगी, थोड़े समय आत्मिक दृष्टि देने के बाद ही फिर आओ मेरे भाई, ओम शांति, फिर बात करेगी। आज हम ये भूल गए हैं, किसी को भी देखें पहले ये आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें तो ही जाकर ये पक्का होगा। बाबा ने, हमारे दादियों ने सब अभ्यास किए थे, हम भूल गए हैं, अभी फिर से अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तो इस पापों से, इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो यही तपस्या है, सदा स्मृति रहे कि मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, भ्रुकुट के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, ये आत्मिक स्मृति एकदम पक्की हो जानी चाहिए। और जिसको भी देखें, जिसको भी देखें, आत्मा ही दिखाई दे, शरीर दिखाई ही न दे, बाबा कहते हैं। क्योंकि अगर शरीर को देखोगे तो बाबा की महावाक्य बताऊं, बाबा ने कहा है जो चमड़ी को देखने का, देह क्या है, चमड़ी है ना, जो चमड़ी को देखेगा वो अंत में चमार बनेगा, सत्ययुग में जाके चंडाल बनेगा। ये बाबा के महावाक्य को याद तो करें मेरे भाई और बहनों। पुरुषार्थ द्वारा ऊंच पद पाएं, बाबा हमें उम्मीद रखते हैं कि मेरे बच्चे तपस्या करें। अब तपस्या की आवश्यकता है, तपस्या का झलक और फलक हमारी नैनों से, हमारे चलन से, चेहरे से दिखाई दे लोगों को, दूर से ही आकर्षण करे लोगों को। हमारी ये स्मृति पक्का कि मैं एक मस्तक में बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा, हमारी स्मृति वृत्ति में सिवाय आत्मिक स्वर पर कुछ दिखाई न दे, और रूहानी नशा रहे कि मैं कौन हूँ, वो ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा रहे, और मेरे मस्तक के चहों और एक सुंदर प्रकाश का, पवित्रता का आभा मंडल है, मैं प्रकाश का ताजधारी हूँ। ये स्मृति जब तक हमारा न रहे तो लोगों को कैसे अनुभव होगा। अभी बाबा चाहते हैं हम सभी तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारी नजर आए सबको, दूर से ही ये दिखाई दे हमारी रूहानी झलक फलक, तो ही तो बाबा प्रत्यक्ष होंगे। और ये संगठित रूप में, कोई एक बनने से नहीं होगा, हम सभी को मिलकर ही तपस्या करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। स्थूल चीज का त्याग कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये देह जिसके साथ पूरा सारा जीवन रहो भी, सब कुछ करो भी, लेकिन इसको भूलो, ये कठिन तपस्या है, कठोर तपस्या है। सेकेंड सेकेंड का अटेंशन चाहिए, सेकेंड सेकेंड का अटेंशन चाहिए, नहीं तो कैसे भूलेगा इसका। तो सारा दिन हम चेक करें, क्या चेक करें, कि मैं जिसको भी देखता हूँ सबसे पहले तो मेरी स्वयं की स्मृति रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर तो एक साधन है, मैं मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये स्मृति है। और जिसको भी देखें हमारी दृष्टि बिल्कुल एकदम आत्मा की तरफ जाए, शरीर तो देखें ही नहीं, और अगर शरीर दिखता भी है तो फरिश्ता नजर आए, क्या ऐसी हमारी दृष्टि वृत्ति है। अगर नहीं है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं तो अंत में चिल्लाना पड़ेगा, त्राहिमाम करना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, बाबा कितने समय से हम सभी को सावधानी दिला रहे हैं, और अभी तो अंत घड़ी है, अंत घड़ी है, तो अभी तो मेहनत करें। अभी जो मेहनत करेगा सो पाएगा अंत में भी, क्योंकि बाबा की पढ़ाई ऐसी है कि जो लास्ट सो फास्ट भी हो सकता है। बहुत दिनों से अगर अलविले रहें तो कोई बात नहीं, अभी भी लग जाएं इसमें दिन रात तो भी पास हो सकते हैं, क्योंकि बाबा का सहारा अभी भी है, अभी भी है। अंत में जब एकदम टू लेट हो जाएगा, बाबा उड़ चलेंगे वतन में, तब तो उस समय कोई सहारा नहीं मिलने वाला है, उस समय कोई कुछ भी नहीं होगा और पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे। तो चलें हम सभी तपस्या करें। क्या तपस्या करें, देहभान बिल्कुल मिट जाए, बिल्कुल बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्मा ऐसा अभ्यास हो जाए कि बिल्कुल मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, एकदम पक्का। जब तक ये अभ्यास नहीं होगा तब तक अंदर हमारे तमोगुण भस्म नहीं होंगे, हमारी एक रस स्थिति नहीं बनेगी और हमारे अंदर सच्चाई सफाई भी नहीं आएगी। अंदर की सच्चाई सफाई जब तक नहीं आएगी, ये पुरानी दुनिया का विकारों का सफाया भी नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभ्यास करो। तो कैसे अभ्यास करें, क्या अभ्यास करें? बाबा बहुत समय समय बहुत युक्ति हम सभी को बताते आए हैं। बाबा कहते हैं ये देह भान को भूलना, अशरीरी बनने के लिए चार शब्द याद करो बच्चे, सिर्फ चार शब्द याद करो। कौन से चार शब्द? कौन से चार शब्द? वो चार शब्द है गीत, मीत, प्रीत और रीत। याद रहा? गीत, मीत, प्रीत, रीत, ये चार शब्द से अशरीरी बन जाओगे। ये बाबा का महावाक्य है। कैसे? देखिए, जब हम गीत सुनते थे, आजकल तो मीडिया का इतना ये सब हो गया है, पहले ज़माने में संगीत संध्या होती थी, लोग शाम को फ्री रहते थे, जाके बैठते थे, सुनते थे, वहाँ दो तीन क्लासिकल सिंगर अपने वीणा संतूर ये सब लेके आके क्लासिकल गीत गाते थे। लोग घंटों तक, रात रात तक बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध होके सुनते थे। और जब कोई गीत गाता है या ऐसे सुनता है, वो इतना भाव विभोर हो जाता है, अपना सुदबुद्धि भूल जाता है, देहभान सहज मिट जाता है। आज भी बाबा के सुंदर सुंदर गीत है। बाबा शुरू शुरू में बहुत सुंदर गीत बजाते थे, फिर मुरली शुरू करते थे। क्यों? गीत एक सुंदर साधन है। गीत द्वारा सहज अशरीरी बन सकते हैं, देहभान भूल सकता है। जब बाबा के बहुत सुंदर सुंदर प्यार के गीत हम सुनते हैं, देखना एकदम मन भावी भर उठता है, गदगद उठते हैं। भक्ति में भी क्या है, भक्ति में भी वास्तव में गीत संगीत का बहुत उसका प्रभाव है। सच्चे भगत गीत गाते गाते, भजन गाते गाते, कीर्तन करते करते, मैंने खुद देखा है, इतने भाव प्रवण हो जाते हैं, एकदम रोमांच होके, गदगद होके, आनंदाश्रु झरझर बहते हुए मैं देखा हूँ, बेहोश हो जाते हुए देखा हूँ ऐसे भी भगत। तो जहाँ भगवत परिचय ही नहीं है, प्राप्ति ही नहीं है, तो भी भक्ति में ऐसा होते हुए हमने देखा है। और यहाँ स्वयं भगवान हमको मिल गए हैं और उनके प्यार में खो के क्या हम इस शरीर को नहीं भूल सकते हैं? दिख जाए अगर हम बाबा को याद करते करते एकदम गदगद होके, आनंद विभोर होके, रोमांच होके, आनंदाश्रु नहीं झरता है, तो सूरदास जैसा आँखों को फोड़ देना चाहिए मेरे भाई और बहनों, अभी ऐसी स्थिति चाहिए। तो बाबा का प्यार के इतने हजारों गीत अभी है, जो आपको मन पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, जो गीत सुनते ही मन गदगद उठता है, ऐसा गीत को बार बार सुनो, बार बार सुनो, देखो देहभान भूल जाएगा। तो गीत, दूसरा है प्रीत। प्रीत बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में लोग देह से कितना प्रीत रखे हैं, आप देखो द्वापर युग से इतिहास पढ़ो, ये देह का प्रीत के कारण लोग अपने ताज तख्त तिलक गंवा दिए, कितने राजाएं छोड़ दिए अपनी राजाई। तो देह के पीछे पागल होके लोग दुनिया को भूल जाते हैं, और यहाँ तो परमात्मा स्नेह है, एक बाबा से स्नेह है, तो क्या होना चाहिए? तो परमात्मा से प्रीत जोड़ के हम शरीर को नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये पुराना इस शरीर, जहाँ सारा कभी आप ऑपरेशन थिएटर में आओ, मैं दिखाऊंगा इस शरीर में क्या है, ऊपर खाली एक पॉलीथीन जैसे चमड़ी ढकी हुई है मेरे भाई और बहनों, अंदर तो सारा कफ, मल, मूत्र, पित्त सब क्या भरा पड़ा है, मल मूत्र ही तो है और क्या है, ये शरीर एक कीचड़े का डिब्बा ही तो है और क्या है। इस शरीर से प्रीत रखना, इसलिए बाबा कहते हैं मुर्दों से प्रीत रखना, चमार बनोगे जाके, चंडाल बनोगे, इसलिए बाबा कहते हैं इस शरीर को भूलने के लिए। जब दुनिया में इस शरीर को शरीर के साथ प्रीत रखकर दुनिया भूल जाते हैं, सुदबुद भूल जाते हैं सब, तो यहाँ परमात्मा प्रेम, परमात्मा से प्रीत जुड़ाकर क्या देह को नहीं भूल सकते हैं, दुनिया को नहीं भूल सकते हैं, सब भूल सकते हैं, एक प्रीत ही हमें संपूर्ण बना सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रीत। तो गीत प्रीत, तीसरा है मीत। दुनिया में अगर कोई दो दोस्त मिल जाते हैं बहुत सालों के बाद, आपस में जब मिल जाते हैं इतना प्यार आपस में होता है कि वो बैठे बैठे गप करते करते पूरा रात भी बीत जाता है, उनको पता ही नहीं चलता, सुध-बुध नहीं रहता है। दो मीत आपस में जब मिलते हैं वो दुनिया की स्मृति भूल जाती है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो अगर दुनिया में लौकिक रीति से भी लोग भूल सकते हैं, तो यहाँ हमारा मन का मित जिसको हम द्वापर युग से ढूंढते आए, कितने जन्म क्या क्या नहीं किए, कहाँ कहाँ नहीं भटके, जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गए, तो उनसे अगर वो मित मिल गया, मन का मित मिल गया, तो उनकी खातिर क्या ये देह को नहीं भूल सकते हैं? तो बाबा को अगर मित बनाते हैं तो देहभान भी मिट सकता है। और ब्राह्मण कुल की जो रीत रसम है उस मर्यादा अनुसार भी चलना पड़ेगा, नहीं तो देहभान भूलना इतना आसान नहीं है। जो देहभान को भूलेगा वास्तव में उसको देही अभिमानी स्थिति का अनुभव होगा, और देही अभिमानी स्थिति ही तो योग है। हमारा योग का तपस्या का फाउंडेशन ही यही है, देह को भूलना। जब तक हम देह को नहीं भूलते, आज तक हम भक्ति में क्या करते थे, भक्ति में देह को भूले नहीं, देह को भूले ही नहीं, इसलिए हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुटा नहीं और शक्ति मिली नहीं। खाली हम मांगते रहे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, सब गंवा दिए बाबा ने कहा। तो अभी अगर देह को भूलेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, तो ही बाबा से योग लगेगा, नहीं तो योग लगेगा नहीं। बहुत बाबा के बच्चे कहते हैं योग में कुछ अनुभव नहीं होता, योग लगता ही नहीं। उसका मूल कारण यही है, अभी तक देहभान को भूले ही नहीं। अरे जब बाबा के योग में बैठते हैं, याद में बैठते हैं, शरीर भूल ही जाना चाहिए। बाबा खुद 80-90 साल की उम्र में भी चार घंटा बैठ जाते थे, आज जवानी में भी एक घंटा बैठ नहीं पाते हैं। भाई बहने इधर उधर खुसर खुसर होते रहते हैं, हाथ पांव हिलता रहता है, उठ ही नहीं, इधर भागेंगे, आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते। देहभान को भूले ही नहीं। मेरे भाई और बहनों, अभी तो तपस्या करें, फॉलो फादर करें, बाबा को याद करके ऐसे तन्मय हो जाएं बाबा के प्यार में, जो ये देह का सब भानी मिट जाए, भूल जाए, अशरीरी हो जाएं, आज इसकी आवश्यकता है। तो योग का फाउंडेशन भी देही अभिमानी बनना, आत्माभिमानी बनना, देह को भूलना। जितना जितना देह को भूलेंगे, बाबा से सर्वशक्तियों की अनुभूति होगी, बाबा से समीप संबंधों का अनुभव होगा, बाबा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी। तो योग का फाउंडेशन भी ये देह को भूलना, जब तक देह को नहीं भूलेंगे कैसे होगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ब्राह्मण कुल की जो रीत रसम है उसको भी मत भूलो। तो गीत, मीत, प्रीत, रीत, चार शब्द को अगर जीवन में अपनाओगे तो सहज ही अशरीरी हो जाओगे। अगर इतनी सारी बातें भी याद नहीं आता है, मैं कहूँगा एक ही बात, जैसे संपूर्ण वैराग्य वृत्ति के लिए बाबा ने कहा एक शब्द याद रखो, ओ है याद है बाबा ने क्या कहा? ओ है रहम दिल बनो, रहम दिल बनो तो वैराग्य वृत्ति आएगी। इसी प्रकार बाबा कहते हैं अगर देह और देहभान का ये सब त्याग करना पड़ते चाहते हो तो एक ही शब्द याद रखो, एक ही शब्द, सब कुछ त्याग हो जाएगा, एक ही शब्द याद रखो। कौन सा? कौन सा? एक ही शब्द, ये बाबा का महावाक्य है, मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा ने कहा है बच्चे, एक बाप से ही संपूर्ण प्यार, अटूट स्नेह ही संपूर्ण ज्ञान है। एक बाबा से ही अटूट स्नेह ही संपूर्ण ज्ञान है। जिसका परमात्मा से प्यार जुट गया, जो बाबा से संपूर्ण प्यार हो गया, वो सब कुछ भूल जाएगा। एक माँ बच्चा से जब प्यार होता है, बच्चा बीमार हो जाता है, माँ रात रात जाकर खाना पीना छोड़ देगी, नींद छोड़ देगी, सब कुछ छोड़ देगी, सब कुछ त्याग कर बैठेगी। कोई थकान नहीं होता है, कोई आलस्य नहीं आता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, क्योंकि बच्चा से जो प्यार है सब कुछ त्याग करा देता है। इसी प्रकार एक परमात्मा प्यार ही हमें सब कुछ त्याग कराने के लिए मदद करेगा। मेरे भाई और बहनों, हमें त्याग में अगर मेहनत लग रहा है, इसका मतलब है बाबा से हमारा प्यार जुटा नहीं ठीक से। एक बाबा से संपूर्ण प्यार हो गया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सहज हो जाएगा, देहभान को भूलना सहज होगा। तो इसलिए आए तपस्या करें, क्या करें, क्या अभ्यास करें, अभ्यास करें कि मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, मैं एक मस्तक मणि हूँ, ये शरीर तो मेरा एक अमानत है, एक साधन है, इसके द्वारा मैं ईश्वरीय सेवार्थ बाबा ने मुझे दिया है, लेकिन मस्तक के बीच में मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, एकदम आत्मिक वृत्ति दृष्टि पक्का हो जाए, इसका अभ्यास करें। और बाबा कहते हैं अपने अनादि और आदि स्वरूप को याद करें, अनादि स्वरूप ही ज्योति स्वरूप है, बिल्कुल साकारी की आकारी कोई स्वरूप याद न रहे, परम धाम में मूल वतन में एकदम ज्योति स्वरूप प्रकाश का पुंज हो, एक दिव्य सितारा हूँ, वही बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा दिखाई दे, वही अनुभव करें चलते फिरते उठते बैठते, और नहीं तो आदि स्वरूप जो भविष्य स्वरूप है, इस जीवन का भविष्य स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप, एक प्रकाश की काया में मस्तक के चहुं और एक सुंदर प्रभा मंडल, दो सुंदर ज्ञान और योग उमंग और उत्साह रूपी पंखों से सुशोभित डबल लाइट, एक ही वृत्ति, एक ही वृत्ति, बस सबका भला हो, सबका कल्याण हो, प्रभु संदेश वाहक, एक ही रिश्ता, एक ही रास्ता, सबके लिए सुभावना शुभकामना, बस बिल्कुल निश्चिंत जीवन, ऐसे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव हो, नहीं तो भविष्य विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप, मैं चतुर्भुज विष्णु स्वरूप हूँ, देवता स्वरूप संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप याद रहे, यही सामने नज़र दिखाई दे, जिसको भी देखते हैं शरीर को देखे नहीं आत्मा ही नजर आए, उसको भी ये मेरा एक भाई है, प्रभु संतान है, आत्मिक नज़र से देखें, उनको भी फरिश्ता स्वरूप में देखें, सारा दिन यही अभ्यास करें, यही तात और लात लग जाए और यही तपस्या करें। बाबा चाहते हैं कि हम सभी ऐसी तपस्या करें कि हमारी रूहानी आकर्षण सबको खींचे, हम प्रत्यक्ष हो जाएं बाबा के बच्चे सभी दुनिया के सामने, तो ऐसे तपस्वी कुमार अभी बनने की आवश्यकता है, तपस्वी कुमारी बनने की आवश्यकता है, तो ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, बाबा के साथ भी चलेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, देह भान को, देह अभिमान को त्यागें, ये पाठ जब तक पक्का नहीं होगा बाकी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, दिन रात लगन लग जानी चाहिए कि मुझे कैसे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में फेल तो फेल, ये हमारा आदि का लेसन है, अंत का भी लेसन है, अंत में बाबा कुछ नहीं पूछेंगे, एक ही प्रश्न पूछेंगे, अशरीरी भव जो बन गया बाबा के साथ उड़ चला, नहीं तो यहाँ ही रह जाएगा, ठीक है, चलें करें तपस्या, बाबा को प्रत्यक्ष करें, देह को त्यागें, देहभान को त्यागें, फिर आगे सुनेंगे और क्या क्या त्याग करना है। ओम शांति।